Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shyam Sundar. Radha Shyam Sundar Radhe, Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य स्तोत्र सति His Divine Grace of Acharana Aravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Hitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrind Ki Jai Samaveta Bhakta Vrind Ki Jai Samaveta Bhakta Vrind Ki Jai श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंद दसवां अध्याय भगवान सभी प्रश्नों का उत्तर है श्लोक संख्या 27 उत्सिथृक्षो धातु मलम निरभिद्यत वै गुदम ततः पायुः मित्रः ततः मित्रः उत्सर्गः उभय आश्रयः उत्सिथृक्षो धातुमलम् निरभिद्यत वैगुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सिथृक्षोर्धातुमलम् निरभिद्यत वैगुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सिथृक्षो धातुमलम् निरभिद्यत वैगुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सृक्षा धातु मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय सुषृक्षोधातुमलम् निरभिद्यत वैदुदम् ततः पायुस्ततो मित्रा उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सृक्षोधातुमलम् निरभिद्यत वैदुदम् ततः पायुस्ततो मित्रा उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सृक्षोधातुमलम् निरभिद्यत वैगुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सृक्षोधातुमलम् निरभिद्यत वैगुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः माताजी उत्सृक्षोधातुमलम् निरभिद्यत वैगुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सृक्षोधातुमलम् निरभिद्यत वैगुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः उत्सृक्षोधातुमलम् निरभिद्यत वैगुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य उत्सृक्षोः मल त्याग की इच्छा से धातु मलम खाद्य पदार्थों का मल निरभिद्यत प्रकट हुआ वै निश्चय ही गुदम गुदाद्वार ततः तत्पश्चात पायुः निसर्जन इंद्रिय ततः तत्पश्चात मित्रः अधिष्ठाता देवता उत्सर्गः बाहर निकलने वाली वस्तु उभय दोनों आश्रयः शरण अनुवाद तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं तात्पर्य एक ही वाक्य का तात्पर्य है जहां मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो जहां मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण होता हो वहां जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है न होना चाहिए यहां पर जहां मल त्याग करते हुए मल पर भी नियंत्रण न होता हो वहां जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत के प्रसंग में शुकदेव गोस्वामी भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। ये 10वां अध्याय चल रहा है। आपको याद होगा कि 9वें अध्याय के अंत में शुकदेव गोस्वामी कह चुके हैं कि हे राजा परीक्षित, आपके अनेक प्रश्न हुए हैं, जैसे कि विराट रूप से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इन प्रश्नों का उत्तर मैं अब देने जा रहा हूं। तो फिर जब 10वें अध्याय प्रारंभ हो 10वां अध्याय प्रारंभ होता है, तो उस समय शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णित 10 लक्षणों का या 10 विषयों का उल्लेख करते हैं। और इन 10 लक्षणों का उल्लेख करने के बाद संक्षिप्त रूप में इनका वर्णन करते हैं आने वाले और 8 श्लोकों में। और जब आश्रय तत्व का वर्णन करने जाते हैं, तो इसके पहले वो बताते हैं कि इस संसार में, इस भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष पाए जाते हैं। एक है आदि भौतिक पुरुष, जो कि ये पदार्थों से, भौतिक पदार्थों से बना हुआ देह है, शरीर है। फिर है आध्यात्मिक पुरुष, जो कि आत्मा है, जो देहधारी है और जो देह का भोग करने का प्रयास करती है। और तीसरा है आधिदैविक पुरुष, जो कि देवतागण है, जो कि इस आध्यात्मिक पुरुष को भोग करने हेतु सूक्ष्म इंद्रियां प्रदान करते हैं। और ये तीनों जो पुरुष हैं, ये एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर रहते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। हम देख चुके हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह चुके हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारी आंखें हैं, वो देखने के लिए सूर्य के किरणों पर निर्भर है। हमारी आंखें अर्थात सूक्ष्म दृष्टि, ये स्थूल आंखें नहीं, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म आंखें, और साथ साथ में जो देखने की शक्ति है, वो सूर्य देव से आती है। तो सूर्य देव न केवल हमें वो देखने की दृष्टि देते हैं, वो सूक्ष्म इंद्रियां प्रदान करते हैं, वो साथ साथ देखने के लिए प्रकाश या ज्योति भी प्रदान करते हैं सूर्य किरणों के रूप में। तो सूर्य किरणों के बिना आंखें देख नहीं सकती, और अगर आंखें नहीं होती देखने के लिए, तो सूर्य किरणों का क्या मतलब, क्या लाभ, इनके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। तो आंखें सूर्य के ऊपर निर्भर है, सूर्य आंखों के ऊपर निर्भर है। तो जब हम कहते हैं कि सूर्य हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, सूक्ष्म इंद्रियां प्रदान करते हैं, तो हमें यह जानना है ये इंद्रियां ये सूक्ष्म शरीर से संबंधित हैं, क्योंकि ये आंखें तो हमें मां से प्राप्त होता है, मां के शरीर से प्राप्त होता है। और ये जो आंखें हैं, स्थूल आंखें, मृत्यु के बाद भी तो शरीर में रहती ही हैं। मृत शरीर में भी आंखें होती हैं, कान होते हैं, जीभ होता है, परंतु मृत शरीर आंखें होते हुए भी देख नहीं सकता, कान होते हुए भी सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो असली इंद्रियां हैं, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो आत्मा को लेकर दूसरे देह में चली गई हैं। तो ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये एक अधिष्ठाता देव होते हैं जो प्रदान करते हैं। तो ये स्थूल शरीर ये एक भोग का विषय है आध्यात्मिक पुरुष के लिए, परंतु इसके लिए सूक्ष्म इंद्रियों की आवश्यकता है। सूक्ष्म इंद्रियां इस स्थूल शरीर में वास करती हैं, और स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियां सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर आधारित हैं। उधर अध्यात्म पुरुष आत्मा भी इन सब का भोग करने के लिए उन देवताओं के ऊपर निर्भर है जिन्होंने की शक्तियां दी हैं। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये तीनों पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष, अधिभौतिक पुरुष और अधिदैविक पुरुष, ये परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। तो फिर श्री प्रभुपाद जी ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर ये तीनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, कोई स्वतंत्र नहीं है, तो इनको बनाने वाला कौन है? ऐसी जो योजना बनाई किसी ने कि ये इसके ऊपर निर्भर है, वो इसके ऊपर निर्भर है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो ये सारी योजना, ये सारी सृष्टि बनाई किसने? और जिसने बनाई वो तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि सब कुछ उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए फिर नौवें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, भगवान की परिभाषा देते हुए, आश्रय तत्व की परिभाषा देते हुए कहते हैं, स्व आश्रय आश्रय, कि भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं होते, अपने आप के ऊपर ही वो आश्रित रहते हैं। भगवान को किसी दूसरे या बाह्य आश्रय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान से बाहर कोई तत्व नहीं है, भगवान से बाहर किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है। और प्रभुपाद जी आगे भी बताते हैं नौवें श्लोक के बाद में, अर्थात दसवें श्लोक से लेकर आगे ये वर्णन चल रहा है कि विराट रूप का प्राकट्य कैसे होता है, क्रमशः जो विराट रूप के अलग अलग अंग हैं वो कैसे प्रकट होते हैं। जैसे कि एक माँ के गर्भ में बच्चे का, बच्चे के शरीर का विकास कैसे होता है, शरीर के अलग अलग अवयव जो हैं वो क्रमशः शनै शनै प्रकट होने लगते हैं, वैसे भगवान की अनंत शक्ति से इस भौतिक सृष्टि के भीतर भी ये जो विराट रूप के अलग अलग अवयव हैं वो भी प्रकट होने लगते हैं, परंतु ये सब भगवान के ऊपर आश्रित है। प्रभुपाद जी कह चुके हैं कि जैसे यहाँ पर सृष्टि में, यहाँ भौतिक जगत में हम पंखे का या बिजली का या लाइट का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बिजली कहीं से आती है, ये जो यंत्र है ये किसी के ऊपर आश्रित है, बिजली के ऊपर। तो बिजली ऊर्जा घर के ऊपर आश्रित है, ऊर्जा घर में बिजली का उत्पादन होता है, परंतु ऊर्जा घर जल के ऊपर आधारित होता है, और जल बादलों के ऊपर आश्रित होता है, और बादल सूर्य के ऊपर आश्रित होता है, और सूर्य सृष्टि के ऊपर आश्रित होता है, और सृष्टि भगवान के ऊपर आश्रित होता है। तो हर चीज अंततः भगवान के ऊपर आश्रित होता है। तो जब ये सृष्टि का निर्माण हो रहा होता है तो हर पल, हर कदम भगवान की दृष्टि काम करती है, भगवान की अचिंत्य शक्ति काम करती है, जिससे कि ये संभव हो पाता है। धीरे 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 से जैसे जैसे विराट पुरुष के अलग अलग अवयव बनने लगते हैं, वैसे वैसे और भी ज्यादा विकास होने लगता है, और जो अधिष्ठाता देव होते हैं उनका जन्म भी होता है। हर चीज के पीछे व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है। तो उसी प्रकार से जब ये प्राण शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति ये सब विराट रूप में आ जाती है, तो फिर विराट रूप के अंदर इच्छा हो जाती है खाने की, भूख लग जाती है। जैसे भूख लगती है तो भूख मिटाने के जो अवयव है या जो अंग है शरीर का, वो प्रतीत होता है, प्रकट होता है, और वो है जीभ। सबसे पहले जीभ प्रकट होता है, और जीभ है इससे हम स्वाद ले सकते हैं। तो इसके लिए वरुण देव अधिष्ठाता देव हैं। तो जब वरुण देव प्रकट होते हैं तो साथ साथ में स्वाद लेने की इंद्रियां भी प्रकट हो जाती हैं, और स्वाद लेने के लिए जो वस्तुएं हैं उनका प्रकट भी हो जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर तलु, फिर उसके बाद में मुख, और फिर कान, आंखें, और उनके साथ साथ अधिष्ठाता देव जो है वो धीरे 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 से प्रकट होते हैं। ये सब साथ साथ में होता है। जो तन मात्र हैं, जो आदि भौतिक, आदि पुरुष, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये तीनों पुरुष जो है इनका जन्म, इनका इनकी निर्मिति एक साथ होती है। तो क्रम से इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते आए हैं। भले समझने के लिए ये सारी चीजें इतने आसान न हो, हमारे कल्पना के बाहर हो, ये कैसे हो सकता है, फिर भी श्रद्धा पूर्वक इन चीजों का श्रवण हमें करना चाहिए। हालांकि हमारी आसक्ति, हमारा आकर्षण भगवान के इस रूप के ऊपर नहीं है, फिर भी ये भी भगवान की एक लीला है, ये सृष्टि लीला है। लीला क्या चीज है? जब कोई कार्य स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में किया जाता है तो उसे लीला कहते हैं। जो भी कार्य बद्ध अवस्था में किया जाता है वो कर्म कहलाता है, क्योंकि वो कर्मों के नियम से फिर आश्रित होता है। हम जो कर्म करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, उन्हें कर्म इसलिए कहते हैं कि ये कर्म के नियम के ऊपर आधारित होते हैं। और हम बद्ध हैं, हम बद्ध हैं, हम जब कर्म करते हैं तो कर्मों के फल मिलते ही हैं, क्योंकि कर्म का कानून है, कानून को बनाने वाला कोई है। तो इसलिए हमारे कार्यों को लीला नहीं कहते हैं, उनको कर्म कहते हैं, क्योंकि हम आश्रित हैं, हम निर्भर हैं अनेक चीजों के ऊपर और अंततः भगवान के ऊपर। परंतु भगवान कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, पूर्ण स्वतंत्र हैं, इसलिए उनके कार्यों को लीला कहते हैं। क्योंकि इन लीलाओं के पीछे केवल उनकी इच्छा है, स्वेच्छा से वो कार्य करते हैं, वो बाध्य नहीं होते हैं कोई इस प्रकार से उस प्रकार से कार्य करने के लिए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहां क्रम से जब वर्णन करते हैं तो ये साबित करना चाहते हैं इस वर्णन के माध्यम से कि भगवान स्वतंत्र हैं, और जब वो भौतिक सृष्टि में भी प्रकट होते हैं तो उस समय भी वो स्वतंत्र रहते हैं, अपने स्वतंत्रता को वो खोते नहीं है। हर अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण तरह से स्वराट या स्वतंत्र रहते हैं। भौतिक सृष्टि में जब हम आते हैं तो हम बद्ध अवस्था में आ जाते हैं, परंतु भगवान बद्ध अवस्था में नहीं आते। भगवान सदैव तीन गुणों के परे रहते हैं, भौतिक सृष्टि के परे रहते हैं, वो स्वतंत्र रहते हैं। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए इन श्लोकों में, इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ये सारा वर्णन करते हैं। बस क्रम से श्रद्धापूर्वक हम समझ लें कि कैसे ये विराट रूप का प्राकट्य होता है धीरे 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 से। वास्तव में ये विराट रूप जो है ये एक काल्पनिक रूप है। हम कल्पना करते हैं एक व्यक्ति है जिसकी आंखें हैं, जिसके कान हैं, जिसका नाक है। श्री राजीव गोस्वामी अपने विशेष संदर्भों में बताते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस विराट रूप को इतना मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? वैसे स्वीकार तो करते हैं कि विराट रूप है, और ये भी मानते हैं कि ये भगवान का रूप है, लेकिन इसकी उपासना नहीं करते और न ही इसको ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? माया सृष्टि, आगे चल के बताने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये माया की सृष्टि है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, इस रूप के प्रति वो आकर्षित नहीं होते हैं। भगवान के धाम में जो भगवान के अनंत रूप हैं, चाहे वो चतुर्भुज रूप हों या त्रिभुज रूप हों, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, संधनी शक्ति द्वारा निर्मित है। इसलिए ये रूप भगवान की आत्म माया शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। लेकिन यहाँ जो विराट रूप भगवान का होता है, वो भगवान की बहिरंगा माया शक्ति द्वारा निर्मित है। इसलिए शुद्ध भक्तों को ऐसे रूप से कोई लेना देना नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं 4th अध्याय में ही कि जब वो आते हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, कि मैं भौतिक सृष्टि के भीतर जब प्रकट होता हूं तब भी मैं अंतरंगा शक्ति के द्वारा मेरे रूप को प्रकट करता हूं। तो वैकुंठ जगत की बात तो दूर है, लेकिन जब यहां भौतिक सृष्टि में भी भगवान आते हैं तो अपने दिव्य रूप लेकर ही आते हैं। यहां भौतिक सृष्टि में आने के बाद उनका रूप भौतिक नहीं बनता, इसलिए चाहे भगवान का रूप वैकुंठ जगत में स्थित होने वाला हो या इस भौतिक जगत में प्रकट होने वाला रूप हो भगवान का, जो रूप आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होती हैं, जो भगवान के दिव्य सुंदर रूप होते हैं, उनके प्रति भगवान के शुद्ध भक्त आकृष्ट होते हैं। दूसरे रूपों के प्रति भक्तों की कोई रुचि नहीं रहती है। 5 प्रकार के उपासक होते हैं, ऐसे गीता में बताया जाता है, भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। सबसे ऊंचे सर्वश्रेष्ठ उपासक वो होते हैं जो ऐसे भगवान के आध्यात्मिक दिव्य सच्चिदानंद रूप की सेवा करते हुए उनको प्रेम करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मुक्तयः। वो कहते हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो सदैव मेरी दिव्य प्रकृति, मेरे दिव्य शक्ति के आश्रित में रहते हैं, अर्थात श्रीमती राधा रानी। प्रभुपाद जी कहते हैं दैवीं प्रकृति मतलब राधा रानी, क्योंकि राधा रानी ही भक्ति की सागर है, भक्ति श्रीमती राधा रानी से ही आती है। हमें अगर भक्ति चाहिए तो श्रीमती राधा रानी के आश्रय में जाना चाहिए, राधा कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं श्रीमती राधा रानी के आश्रय को स्वीकार करके भगवान राधा श्री कृष्ण की सेवा करते हैं अनन्य भाव से। अनन्य भाव का मतलब है कि इस सेवा भाव में, इस प्रेम में कोई मिश्रण नहीं होता है, केवल भगवान को प्रेम करते हैं। भीष्मदेव कहते हैं कि प्रेम का मतलब है कि जब किसी एक व्यक्ति के ऊपर वो केंद्रित रहता है, वो प्रेम बांटा नहीं जाता कि ये भी हमारे प्रेम के पात्र हैं, ये भी हमारे प्रेम के विषय हैं, इन्हें भी प्रेम करते हैं, उन्हें भी नहीं, केवल हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी या दिव्य शक्ति के आश्रय लेते हैं। लेकिन इनसे जो निम्न श्रेणी में रहते हैं, जो लोग भगवान को व्यक्ति मानते हों भले, लेकिन अनन्य भाव नहीं है, एकाग्र चित्त से भजन नहीं करते भगवान का, मिश्र भाव है उनका। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 4 प्रकार के लोग रहते हैं जो अलग अलग कारणों से भगवान के पास आते हैं। एक है जो किसी भौतिक पीड़ा को कम करने के लिए आते हैं, कोई आते हैं कोई अर्थ लाभ करने के लिए, कोई जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए, और कोई ज्ञानी लोग आते हैं। तो ये दूसरे श्रेणी के उपासक हो गए। आगे 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि और 3 प्रकार के उपासक होते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। वो कहते ऐसे भी कई लोग होते हैं जो एकत्वेन पृथक्त्वेन, जो द्वंद्वों में पृथक्त्वेन मतलब द्वंद्वों में वो एकता देखते हैं, निराकार की उपासना करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि एकता तो है परंतु एकता श्री कृष्ण में आश्रित है, वो केवल ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हैं। और इस निराकार को परम सत्य मान के कभी कभी अपने आप को भी वही परम सत्य मान बैठते हैं। तो ये है वो एकत्वेन पृथक्त्वेन। फिर ऐसे हैं जो लोग बहुधा मतलब जो अनेकों को भगवान मानते हैं, अपने मनगढ़ंत ढंग से रूप बनाते हैं, ये भगवान का रूप है, ये भी भगवान का रूप है। भारत में हम देखते हैं नए नए देवी देवताओं के नाम निकलते हैं। कभी कभी हम गांव में जाते हैं ना अंदर, तो ऐसे ऐसे नाम निकल आते हैं जिनका कभी हमने सुना भी नहीं है। फलाना कोई देवी थी, इनकी ये मंदिर बना हुआ है, गांव के सारे लोग वहां जाकर उपासना करते हैं, बेचारे अज्ञानी हैं, तो फिर भी बहुधा सबको भगवान मानते हैं। तो देवी देवताओं की जो उपासना होती है उसे ये बहुधा कहते हैं। अपने मन घटित ढंग से भगवान का कोई रूप के ही रूप की कल्पना कर लेना। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेति मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भी मेरी ही पूजा है, मेरी ही उपासना है, परंतु अविधिपूर्वकम् है, विधि पूर्वक नहीं किया गया है, ये सही उपासना नहीं है। जिस प्रकार से जब हम एक वृक्ष के शाखाओं के ऊपर पानी डालते हैं तो हम वृक्ष के ऊपर ही पानी डाल रहे हैं, क्योंकि शाखा भी वृक्ष का ही अंग है, परंतु वृक्ष के ऊपर पानी डालने का ये सही तरीका नहीं है। ठीक उसी प्रकार से देवतागण भी भगवान के ही अंग हैं, उनके विराट पुरुष के भी ये अवयव हैं, उनके अंग हैं, ये भी सब आदि दैव पुरुष हैं। भगवान ने अपनी शक्ति द्वारा इन तीन पुरुषों में अपने आप को विभाजित किया है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तो ये भी भगवान के अंग हैं। परंतु जब हम इनकी उपासना करते हैं, भगवान की उपासना अवश्य करते हैं, परंतु ये सही तरीका नहीं है। भगवान की उपासना करने का तरीका भगवान ने भगवत गीता में बताया है, मन मना भव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम ये वैश्विक सत्यम पे प्रति जाने प्रियो से, कि हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो, और इस प्रकार से अवश्य तुम मेरे पास लौट के आओगे। तो ये भगवान की डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उपासना है। तो देवताओं की उपासना जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, इसलिए भगवान कहते हैं ये उपयुक्त नहीं है। और फिर अंततः पांचवा जो प्रकार होता है उपासना का, या पांच प्रकार के उपासक होते हैं, विश्वतो मुखम, जो भगवान के विराट रूप की उपासना करते हैं, इस भौतिक सृष्टि के बाहर कुछ है नहीं मानते हैं, इस भौतिक सृष्टि को ही सर्वस्व मानते हैं, तो वो भी भगवान की ही उपासना करते हैं। तो नास्तिक लोग होते हैं वो भी उपासक हैं भगवान के, जो वैज्ञानिक हैं, जो इस सृष्टि की परीक्षा कर रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं, ये भी उपासक हैं भगवान के, उस दृष्टि से देखा जाए तो कोई नास्तिक नहीं है। तो नास्तिक इस दृष्टि से कहा जाता है कि उनको ज्ञान सही नहीं है, उनकी भावना सही नहीं है। तो इन सबों को उपासक क्यों कहा गया है जबकि वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते? इनमें से कई उपासक हो सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक हैं जो केवल सृष्टि को मानते हैं, वो यह भी कह सकते हैं कि भगवान है ही नहीं, लेकिन फिर भी भगवान को अपने सृष्टि के रूप में तो मानते हैं, वो मानते हैं कि ये सृष्टि है। तो सृष्टि भी भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न है, सब कुछ भगवान है, लेकिन भगवान सब कुछ नहीं है, भगवान के बाहर कुछ नहीं है, भगवान से स्वतंत्र कुछ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान से अभिन्न हो, जो भगवान से बाहर हो, भगवान से स्वतंत्र हो। इसलिए भौतिक सृष्टि की उपासना या भौतिक सृष्टि को मानना भी ये एक प्रकार की उपासना है, परंतु ये भी अविधिपूर्वकम, क्योंकि एक सृष्टि के पीछे एक सृष्टि करता है ये वो व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए उसका ज्ञान अपूर्ण है और उसकी उपासना भी अपूर्ण है। तो ये पांच प्रकार के उपासक होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि विराट पुरुष या विराट रूप की उपासना करने वाला भी सबसे नीचा नहीं है। सबसे नीचे वो व्यक्ति है जो अपने आप को ही भगवान मानता है। कम से कम जो केवल सृष्टि की उपासना करता है वो अपने आप को तो भगवान नहीं मानता, वो कहता भगवान ही नहीं है। लेकिन जो एकत्वेन पृथक्त्वेन, जो द्वंद्वों में एक देखते निराकार ब्रह्म देखते हैं, वो कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवे, हम सब नारायण हो जाते हैं, नर भी नारायण हो सकता है, हम सब वास्तव में भगवान ही हैं। तो ये सारी भ्रांतियां हैं, परंतु ये सब भगवान के अंतर्गत आती है। भगवान परम सत्य हैं, उनमें सारे भ्रांतियां, सारे सत्य, सारे असत्य, सब कुछ, हर चीज का समन्वय हो जाता है। भगवान में हर वस्तु है, भगवान में सब कुछ होना है, सब कुछ नहीं भी होना, वो भी भगवान के अंदर है। इसलिए उन्हें परम सत्य कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ। ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे अनुभव के भीतर या बाहर जो भगवान के अंदर न हो। इसलिए वो भगवान है, परम सत्य है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। तो इस विराट रूप का वर्णन अब शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर क्रमशः करते जा रहे हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि वो साबित करना चाहते हैं कि इसके पीछे जो परम पुरुष हैं, वो इन तीन पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। ये तीन पुरुष तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन वो परम पुरुष किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, यो माम एवं असम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, कि जो भलीभांति तत्वतः जान लेता है बिना संशय किए हुए, यो माम एवं असम्मूढ़ हो जानाति, असम्मूढ़ हो मतलब बिना कोई संशय के तत्वतः जान लेता है, जानाति पुरुषोत्तमम, कि मैं पुरुष उत्तम हूं। यहां सृष्टि में तीन प्रकार के पुरुष हैं, लेकिन मैं उत्तम पुरुष हूं। जिन उत्तम पुरुष के ऊपर ये तीन प्रकार के पुरुष निर्भर रहते हैं, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेना, तो जो इस बात को जानता है, जो तीन पुरुषों में और मुझ उत्तम पुरुष में अंतर जान लेता है, वो सब कुछ जानता है। तो हमें तीन पुरुषों को भी जानना है, अर्थात इस सृष्टि को जानना है, पराप्रकृति अपराप्रकृति दोनों को जानना है, और साथ साथ परम पुरुष उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को भी जानना है, और दोनों के बीच में संबंध क्या है इसको जानना है। और फिर भगवान कहते हैं कि जो ऐसे पुरुष तत्व को जानता है वो सब कुछ जानता है, सर्वविद, और जानने के बाद क्या करता है, मेरी सेवा करता है। सर सर्वविद भजते माम सर्वभावेना, ते भक्ति भाव से मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। तो अंततः यही हमारा उद्देश्य है। सुखदेव गोस्वामी का उद्देश्य यहाँ विराट रूप का वर्णन करने में ये नहीं है कि वो हमें विराट रूप के प्रति आकर्षित करें। हम याद रखना है कि जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवत परीक्षित महाराज से कहा था, तो उस समय परीक्षित महाराज वहां अकेले नहीं थे, अनेक बड़ी संख्या में वहां ऋषि मुनिगण भी एकत्र हुए थे, नारद जी व्यास देव अनेक थे, परंतु केवल भक्त वहां उपस्थित थे ऐसा नहीं है। तरह तरह के अष्टांग योगी थे, ध्यान योगी थे, हठ योगी थे, ये ज्ञान योगी थे, तरह तरह के ऋषि मुनि सब थे। तो सुखदेव गोस्वामी केवल परीक्षित महाराज को प्रचार नहीं कर रहे थे, इन सब को भी प्रचार कर रहे थे जो वहां नैमिषारण्य वहां पर गंगा के तट पे एकत्र थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो कि बहुत ही एक निपुण प्रचारक हैं, उन्होंने ऐसे इस विषय को विकसित किया कि धीरे धीरे से जितने भी भिन्न मत वाले लोग थे उन सबको एक विषय में ले आना, और वो क्या है, आश्रय तत्व श्री कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी के सामने ये चुनौती थी कि किस प्रकार से सारे वहां एकत्रित ऋषि मुनियों को एक मत में ले आना कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और श्री कृष्ण की सेवा करना, उनके प्रति प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये सारी चीजें शुरुआत में वर्णन कर ली और अंततः जब दशम स्कंद आ गया तो उन्होंने असली बात कह दी, आश्रय तत्व का वर्णन उन्होंने कह दिया। तो ये जो वर्णन है विराट रूप का, इसे हमें सुन लेना चाहिए, समझ लेने का प्रयास करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। परंतु हमारी आसक्ति, हमारा आकर्षण केवल उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए जो यहाँ पर विराजमान है, बांसुरी बजा रहे हैं और जो गौओं को चरा रहे हैं और गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रपुर दृष्टि पिबंध्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं नौवे स्कंद में कि यहाँ के सारे नर नारी जितने भी मनुष्य थे उनका रोज उत्सव हुआ करता था। और रोज उत्सव क्यों था, क्योंकि वे रोज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। किस रूप का दर्शन करते थे, ब्रजवासियों को और मथुरा वासियों को विराट रूप से कोई आकर्षण नहीं था, उनसे भगवान श्री कृष्ण से आकर्षण था। तो कैसा वर्णन किया है, यस्य आननम, जिनका आनन मतलब जिनका मुखारविंद बहुत ही सुंदर था, मकर कुंडल चारु कर्ण, उनके कान भी बहुत सुंदर थे कर्ण, और इन कर्णों में मकर कुंडल थे जो झूम रहे थे और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। भ्राजक कपोल, उनके गाल जो है कपोल चमक रहे थे। सुभग, और उनका शरीर जो है बहुत ही नाजुक कोमल है। ऐसा नहीं है कि वो विराट हैं, उनसे विराट रूप आता है इसलिए वो बड़े तगड़े हैं, हैं वैसे शक्तिशाली सर्वशक्तिमान, लेकिन दिखने में कोमल लगते हैं। सुविलास हासम, सुविलास हासम मतलब हमेशा उनका चेहरा जो है वो हसमुख रहता है, एक विलास की मुद्रा में। नित्योत्सवम न तत्रिपुर दृष्टि पिबंत्यो, तो ये जो ब्रजवासी हैं, ये जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे तो कभी तृप्त नहीं होते थे। न तत्रिपुर, नित्य उत्सव, ये रोज का उत्सव था उनके लिए, रोज जन्माष्टमी, रोज गौर पूर्णिमा, रोज रोज की जन्माष्टमी। नित्य नव नवायमान, भगवान का हर एक दर्शन नवीन होता है, ताजा होता है। तो इस प्रकार से इस रूप के प्रति आकर्षण धीरे धीरे जागृत करना है। नारियों नराश्च मुदिता, मुदिता मतलब बड़े आनंद लेते थे इसमें, साथ साथ कुपिता, कुपित भी होते थे, क्रोधित होते थे। निमेश, जिन्होंने इन आंखों को बनाया है कि आंखों का तो काम होना चाहिए इस सुंदर रूप को देखने के लिए, परंतु आपने पलकें बनाई इस प्रकार से है कि हम पूरी तरह से देख नहीं सकते, निरंतर देख नहीं सकते, अखंड दर्शन नहीं हो सकता हमारा, तो सृष्टिकर्ता ने सही तरह से सृष्टि का सृजन नहीं किया है, ऐसा इनका मत था। तो जब हम विराट रूप का वर्णन सुनते हैं तो इस दर्शन से धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होके हमें उस रूप के प्रति आकर्षण बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने क्रमशः पहले स्कंद से लेकर दशम स्कंद तक इन सारे विषयों का वर्णन किया है। हरे कृष्णा। तो आपके कोई टीकाएं हो, प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं। प्रश्न ये है कि कहा गया है कि विराट रूप काल्पनिक है, तो भगवान ने अर्जुन को क्या रूप दिखाया? देखिए कभी कभी हम बादलों को देखते हैं ना, कभी कभी ऐसे दिखता है कि अरे ये तो एक मुंह है, एक चेहरा है कोई। कभी कभी चांद में देखते हैं तो चांद के काले धब्बे लगा, अरे ये तो आंख है, आंखें हैं और यहाँ कोई चेहरा दिखाई पड़ रहा है। काल्पनिक क्या है? वो चेहरा काल्पनिक है, चांद काल्पनिक नहीं है। बादल के ऊपर जो हम चेहरा देखते हैं वो काल्पनिक है, बादल काल्पनिक नहीं है। उसी प्रकार से सृष्टि काल्पनिक नहीं है। हालांकि मायावादी कहते हैं जगत मिथ्या, लेकिन वैष्णव सिद्धांत है कि जगत मिथ्या नहीं है, ये सृष्टि है, ये भौतिक प्रकृति है, शक्ति है, ये तो शाश्वत है। परंतु इस सृष्टि के विभिन्न रूप जो है वो मिथ्या है, क्योंकि वो क्षणभंगुर है, क्षणिक है। तो उसी प्रकार से भगवान का विराट रूप भी, क्योंकि माया सृष्टि माया का सृजन है, इसलिए काल्पनिक कहा जाता है। इसके विपरीत वो भगवान का रूप है, जैसे हम कह रहे थे, जो सच्चिदानंद रूप है, जिस रूप के प्रति हमें आकर्षित होना चाहिए। प्रश्न ये है कि जब भगवान बताते हैं कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानार्जन कर लेता है व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, तो ऐसे भक्त या व्यक्ति महात्मा कहलाता है, तो किस प्रकार का भक्त है? वो शरणागत भक्त है। ज्ञान के आधार पर वो भगवान के शरण में जाता है, शरण में जाके भगवान की सेवा करता है, भक्त बनता है। ज्ञान का अंत सेवा और भक्ति है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का उद्गम हूं, और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है वो मेरा भक्त बन जाता है। ये महात्माओं का वर्णन है, दैवीं प्रकृति माश्रितः, जिन्होंने भगवान की दिव्य प्रकृति का आश्रय ग्रहण किया हुआ है। और कोई टीका टिप्पणी? हाँ, सामान्य रूप शब्द, ये प्रश्न ये है कि कहा गया था प्रवचन में कि भगवान जो कार्य करते हैं उन्हें लीला कहे जाते हैं, और हम जो करते हैं उसे कर्म कहते हैं। तो जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं, ये क्या है? लीला तो नहीं है। हाँ, एक दृष्टि से आप देखें तो दुनिया की लीला है, सो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती, सपने लीलाएं, सपने आती हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे ही भक्ति के कार्य हैं। कर्म एक साधारण शब्द है कि जो भी कार्य हम दुनिया में करते हैं उसे कर्म कहते हैं, परंतु गीता के अनुसार तीन प्रकार के कार्य होते हैं ना, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो ये अकर्म कहलाता है, मतलब ये आध्यात्मिक कार्य है, भगवान के नाम का जप करना, जिससे कि इस कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। और कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंदे।
Thank you.